नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप रैनोमी से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दोपहर स्वीडन की दो दिन की यात्रा पर गोटेनबर्ग पहुंचेंगे। वे स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टनसन के साथ व्यापार, प्रदूषण रहित तकनीक अपनाने, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रक्षा क्षेत्र में सहयोग पर वार्ता करेंगे। भारत और नेदरलैंड्स ने आपसी संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। प्रमुख क्षेत्र में सहयोग मजबूत करने के लिए 17 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। भारत ने होर्मुज जलडमरू मध्य में व्यापारिक जहाजों पर हमलों की निंदा करते हुए उन्हें अस्वीकार्य बताया। कहा, जहाजों की बेरोकटोक आवाजाही में बाधा उचित नहीं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कांगो और युगांडा में इबोला के प्रकोप को अंतर्राष्ट्रीय चिंता का विषय बताया। मौसम विभाग ने आज अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कुछ स्थानों पर अत्यधिक तेज वर्षा की चेतावनी जारी की। और नेपाल के पर्वतारोही कामी रीता शेर्पा ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ते हुए 32वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़कर इतिहास रचा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्वीडन की दो दिन की यात्रा पर गोटेनबर्ग पहुंचेंगे। श्री मोदी प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टनसन के निमंत्रण पर स्वीडन जा रहे हैं। श्री मोदी की यात्रा का उद्देश्य तकनीक में तेज परिवर्तनों और जटिल भू राजनीतिक चुनौतियों के दौर में सहयोग के नए आयाम तलाशना है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस दौरान श्री मोदी प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टनसन के साथ द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करेंगे। दोनों प्रधानमंत्रियों के साथ साथ यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेन भी यूरोपियन राउंड टेबल फॉर इंडस्ट्री को संबोधित करेंगी। कल अपनी यात्रा के दूसरे चरण में भारत और नेदरलैंड्स ने आपसी संबंधों को रणनीतिक स्तर पर ले जाकर 17 समझौते किए। ये समझौते रक्षा, महत्वपूर्ण खनिज और अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों से संबंधित है। नेदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब येटेन के साथ बातचीत में प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम एशिया और विशेषकर ऊर्जा आपूर्ति में बाधा से विश्व व्यापार पर पड़ने वाले प्रभाव पर चिंता प्रकट की। श्री मोदी और रॉब येटेन ने कहा कि होर्मुज की खाड़ी से होकर जहाजों की बेरोकटोक आवाजाही होनी चाहिए और इसे नियंत्रित करने का कोई भी प्रयास स्वीकार्य नहीं है। दोनों नेताओं ने यूक्रेन रूस संघर्ष पर भी चर्चा की। वे यूक्रेन समस्या का समाधान बातचीत और राजनयिक प्रयासों से किए जाने पर सहमत हुए। बातचीत के बाद भारत और नेदरलैंड्स ने व्यापार और निवेश, रक्षा और सुरक्षा, महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में संबंधों को बढ़ावा देने के लिए एक रोडमैप जारी किया। इनमें सेमीकंडक्टर, अंतरिक्ष, यांत्रिक मेधा और क्वांटम कंप्यूटिंग के क्षेत्र में सहयोग भी शामिल है। दोनों नेताओं ने ग्रीन हाइड्रोजन के विकास के लिए भी साझा रोडमैप जारी किया। भारत ने कहा है कि होर्मुज जलडमरू मध्य में व्यावसायिक जहाजों पर हमले स्वीकार्य नहीं है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पर्वतन नेनी हरीस ने कहा कि चालक दल के सदस्य को निशाना बनाने तथा जहाजों की मुक्त आवाजाही में रुकावट को जायज नहीं ठहराया जा सकता। श्री हरीस ने ये बात वैश्विक ऊर्जा के संबंध में संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद की एक विशेष बैठक में कही। कुछ दिन पहले ओमान के तट के पास भारतीय ध्वज वाले एक जहाज पर हमला हुआ था। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कांगो और युगांडा में इबोला के प्रकोप को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए आपात स्थिति घोषित किया है। इस बीमारी से 300 से अधिक लोग पीड़ित हैं और 88 की मौत हुई है। हालांकि संगठन ने स्पष्ट किया है कि इबोला का संकट कोविड-19 जैसी महामारी जैसा नहीं है। संगठन ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को बंद न करने की सलाह भी दी है। इबोला के इलाज के लिए फिलहाल कोई टीका या उपचार उपलब्ध नहीं है। ये शरीर के तरल पदार्थों के संपर्क से फैलता है और अक्सर जानलेवा बन सकता है। इबोला के अधिकांश मामले कांगो से सामने आए हैं। युगांडा में 2 मामलों की पुष्टि हुई है। सरकार ने कहा है कि सीबीएसई की 12वीं की परीक्षा में ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली में से कोई मूल्यांकन में पारदर्शिता और निष्पक्षता बढ़ी है। 12वीं के परिणामों पर आज नई दिल्ली में स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के सचिव संजय कुमार ने बताया कि विद्यार्थियों ने मार्किंग और उत्तीर्णता प्रतिशत में मामूली गिरावट पर चिंता जताई है। सचिव ने बताया कि सीबीएसई ने इस वर्ष ऐसी प्रणाली लागू की है जिससे मूल्यांकन में अधिक पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित होती है। सचिव ने कहा कि सीबीएसई ने पुनर्मूल्यांकन शुल्क कम कर दिया है। रेल मंत्रालय ने त्रिवेंद्रम नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस के दो पिछले डिब्बों में लगी आग की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। आज सुबह करीब 5:15 बजे कोटा रेल मंडल के नागदा के पास त्रिवेंद्रम नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस के दो पिछले डिब्बों में आग लग गई, जिनमें एक गार्ड डिब्बा और एक एसी थ्री टीयर डिब्बा शामिल है। मंत्रालय ने बताया कि डिब्बे की सुरक्षा प्रणाली के कारण ट्रेन स्वतः रुक गई। दोनों डिब्बों को तुरंत अलग किया गया और घटनाओं में कोई भी यात्री घायल नहीं हुआ। रेलवे ने डिब्बों में अग्निशमन प्रणालियों की जांच का काम शुरू कर दिया है। विदेश राज्य मंत्री पवित्र मार्गरीटा ने कहा है कि भारत संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के साथ अपने साझेदारी के माध्यम से डोमिनिका के कलिनागो समुदाय को सहायता देने के लिए प्रतिबद्ध है। श्री मार्गरीटा ने डोमिनिका के कलिनागो क्षेत्र का दौरा किया। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि भारत डोमिनिका के साथ साझा लोकतांत्रिक मूल्यों और दक्षिण सहयोग पर आधारित अपनी मैत्री को और प्रगाढ़ कर रहा है। कलिनागो डोमिनिका के निवासी है जो कैरिबियाई क्षेत्र के शुरुआती लोगों के वंशज माने जाते हैं जो अब बहुत कम संख्या में बचे हैं। मौसम विभाग ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, पश्चिम बंगाल के हिमालय से सटे इलाकों और सिक्किम में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, दक्षिण कर्नाटक के भीतरी इलाकों, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, केरल, माहे और लक्षद्वीप में भारी बारिश हो सकती है। अगले दो दिन तक बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, ओडिशा, रायलसीमा, तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कोंकण, गोवा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और उत्तर पूर्वी राज्यों में बिजली और तेज हवाओं के साथ तूफान की संभावना है। गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि यांत्रिक मेधा और डीप टेक्नोलॉजी ही भविष्य के अर्थव्यवस्था के मुख्य आधार होंगे। आज गुजरात के अहमदाबाद में मिलियन माइंस टेक पार्क के पहले चरण और ग्रैमी सिटी कैंपस का उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा कि भारत विश्व के हर उभरते क्षेत्र में अग्रणी बन गया है। श्री शाह दो दिन के गुजरात दौरे पर है। वे आज गांधीनगर में राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान के नवाचार एवं इन्क्यूबेशन केंद्र का उद्घाटन करेंगे। वे गांधीनगर नगर निगम के विकास कार्यो का भी उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। श्री शाह गांधीनगर जिला सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ लिमिटेड मधुर डेयरी के नवनिर्मित 5,00,000 लीटर क्षमता वाले संयंत्र का भी उद्घाटन करेंगे। नेपाल के पर्वतारोही कामी रीता शेर्पा ने 32वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़कर इतिहास रच दिया है। 56 वर्षीय कामिरीटा एवरेस्ट पर सबसे अधिक बार चढ़ाई करने वाले शेरपा है। नेपाल के कोशी प्रांत के सोलुखुम्बू जिले में जन्मे कामिरीटा ने पहली बार 1994 में एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी। इसी बीच पर्वत रानी के नाम से मशहूर लहपा शेरपा ने वे एवरेस्ट पर लगातार 11वीं बार सफलतापूर्वक चढ़ाई करने वाली पहली नेपाली महिला होने का अपना रिकॉर्ड बरकरार रखा है। थाईलैंड ओपन बैडमिंटन के पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी को रजत से संतोष करना पड़ा है। फाइनल में इस जोड़ी को इंडोनेशिया के लियो रोली कार्नोडो और डेनियल मार्टिन की जोड़ी ने 12-21, 23-25 से हराया। महिला डबल्स में चीन के बाओ लीजिंग और काओ जिहान ने फाइनल में जापान की रिन इवानागा और की नाकाशिकी को 19-21, 21-16, 21-19 से हरा दिया। आज विश्व उच्च रक्तचाप दिवस है। इसका उद्देश्य उच्च रक्तचाप के बारे में वैश्विक जागरूकता, रोकथाम, पहचान और नियंत्रण को बढ़ावा देना है। इस वर्ष का विषय है उच्च रक्तचाप को मिलकर नियंत्रित करें, नियमित रूप से अपने रक्तचाप की जांच करें और इस बीमारी को हराए। आज विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस है। आज ही के दिन 1865 में पेरिस में संयुक्त राष्ट्र डिजिटल प्रौद्योगिकी एजेंसी अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ की स्थापना की गई थी। इस दिवस का उद्देश्य इंटरनेट और इससे जुड़ी तकनीकों के सकारात्मक उपयोगों को बढ़ावा देना है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुए। नमस्कार।